आहान के विला में सबने मिलकर चाहत और बच्चे के लिए स्पेशल तैयारी की थी। वो एक छोटी सी पार्टी कर रहे थे जिसमें सिर्फ घरवाले ही शामिल थे। पार्टी शुरू होने से पहले तनु आहान और चाहत को बुलाने आई थी। उसके जाने के बाद आहान चाहत को अपने हाथों से तैयार कर रहा था। चाहत बाथरूम में जाकर ड्रेस खुद से चेंज करके आई थी। उसने इस वक्त नेवी ब्लू कलर का कंफर्टेबल फ्रॉक पहन रखा था जो लॉन्ग स्लीव्स का था। चाहत के बाथरूम से आते ही आहान ने एक नज़र उसे देखा और सिर हिलाकर कहा, यू नो वॉट डॉल, तुम कुछ भी पहन लो खूबसूरत ही लगती हो। वैसे कुछ ना भी पहनो तो। आहान अपनी बात पूरी करता उससे पहले चाहत ने उसकी बात बीच में काटते हुए जल्दी से कहा, आहान ये कैसी बातें कर रहे हो आप? बेबी ने सुन लिया तो उसके ऊपर क्या असर होगा? आहान ने आईज रोल की और बोरियत भरे लहजे में कहा, कम ऑन डॉल, इसे अभी कुछ समझ नहीं आता, ये सिर्फ एक वीक का है और तुम मुझसे क्यों शर्मा रही हो? बोलते हुए आहान चाहत के पास आया और उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया था। आहान ने चाहत की नाक पर अपनी नाक रखते हुए कहा, तो मेरी डॉल को मुझसे ही शर्मा रही है? ऐसा कुछ नहीं है, बहुत टाइम से हम दोनों दूर हैं। तो चाहत ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी। आहान उसकी बात पूरी करते हुए बोला, दूर हैं तो इसका मतलब ये नहीं डॉल कि मैं अजनबी हो गया हूँ। आज भी तो मेरी वही डॉल हो जिससे मैं पागलों की तरह प्यार करता हूँ। आहान की बात सुनकर चाहत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। उसके गाल लाल हो रहे थे। चाहत ने धीरे से कहा, आप सच में बदल रहे हो। पहले कभी आपने इस तरह खुलकर प्यार का इजहार नहीं किया और आजकल तो आपको मुझ पर कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा है। हाँ, क्योंकि तुमसे दूर रहना मेरे लिए एक सज़ा की तरह था। अच्छा हुआ ना डॉल मेरी याददाश्त चली गई, वरना शायद मैं तुम्हारा इस तरह दूर जाना झेल ही नहीं पाता, आहान ने इंटेंस वॉइस में कहा। वो दोनों वैसे ही पोजीशन में खड़े बातें कर रहे थे, तभी किसी काम के चलते आयुष वहां पर आया। कमरे का दरवाज़ा लॉक नहीं था। आयुष के दरवाज़ा खोलते ही उसने आहान और चाहत को एक दूसरे के करीब देखा तो उसने जल्दी से अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए कहा, अरे बाप रे, मैं तो बिल्कुल गलत, बहुत ही गलत टाइम पर आ गया। आप दोनों अपना रोमांस कंटिन्यू कीजिए, पार्टी तो हम बाद में भी कर लेंगे। आयुष के अचानक आने पर चाहत हड़बड़ा गई। वो आहान से दूर होना चाहती थी लेकिन आहान ने उसे कसकर थाम लिया था। उसके बाद आहान ने आयुष की तरफ देखते हुए कहा, बिल्कुल, जब तुम्हें एहसास हो ही गया है कि तुम गलत टाइम पर आए हो तो फिर आगे की बकवास करना ज़रूरी नहीं था। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं आहान? आयुष हमें पार्टी के लिए बुलाने के लिए ही आया होगा, चाहत ने आहान को प्यार से डांटते हुए कहा। हाँ देख लीजिए, मेरी भाभी मुझे समझ रही हैं लेकिन लगता है भाई के अंदर कोई इमोशंस नहीं है, आयुष ने बच्चों जैसा मुंह बनाकर कहा। आहान ने उसकी तरफ देखकर सार्कास्टिकली सिर हिलाया और कहा, तुम्हें जितने ड्रामा करने हैं कर लो, लेकिन जिस दिन तुम्हारी शादी होगी हम भी तुम्हें इसी तरह परेशान करेंगे। शादी की बात सुनकर आयुष के गाल लाल होने लगे थे। तभी चाहत ने कहा, मैं आपसे बात करने ही वाली थी, हमें आयुष के लिए भी एक अच्छी लड़की ढूंढनी चाहिए ना, बहुत दिनों से किसी की शादी अटेंड नहीं की। लड़की हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है डॉल, तुम्हारे प्यारे देवर ने पहले ही अपने लिए किसी को ढूंढ रखा है, आहान ने जवाब दिया, जिस पर चाहत हैरानी से आयुष की तरफ देखने लगी। वो मुंह बनाकर बोली, ये तो बहुत गलत बात है, आपने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? आजकल आप दोनों भाई मुझे बहुत कुछ छुपाने लगे हो। आयुष ने अपनी तरफ से सफाई देते हुए कहा, भाई बेवजह, आपने हम दोनों के बीच में लड़ाई लगवा दी। अभी तो मैंने कार्तिका तक को बताया तक नहीं कि मैं उसे पसंद करता हूँ। चलो डॉल, तुम्हें अब तो लड़की का नाम पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, उनके मुंह से खुद ही निकल गया। और वन मोर थिंग, तुम्हारे भरोसे रहता तो अब तक तुम्हारी कार्तिका की डोली उठ चुकी होती। मैंने बात कर ली है उससे, वो शादी के लिए तैयार है और वो तैयार है तभी आज उसे हमारे फैमिली फंक्शन में शामिल होने का मौका मिला है। आहान ने बातों ही बातों में आयुष को सब कुछ बता दिया था। क्या सच में भाई? ओ माई गॉड, आप दुनिया के सबसे बेस्ट भाई हो, मुझसे ये कभी नहीं हो पाता, आयुष खुश होते हुए बोला। वो जल्दी से आहान के पास आया और उसके गले लग गया था। आयुष को खुश देखकर आहान के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वहीं चाहत के चेहरे के भाव गंभीर हो गए थे। कार्तिका का नाम सुनने के बाद उसके चेहरे की खुशी गायब हो गई थी। आहान से अलग होने के बाद आयुष चाहत के गले लगने को हुआ, तभी आहान ने अपना हाथ आगे करके कहा, अरे नहीं, तुमने बहुत टाइटली हग किया है और डॉल इस वक्त काफी वीक है, इतना टाइटली तो मैं भी इसे हग नहीं कर रहा हूँ, अपनी खुशी बाद में जता लेना। ठीक है भाई, आहान ने जवाब दिया और फिर चाहत से बोला, भाभी आप बहुत लकी हो जो आपको ऐसा पति मिला, देखा जाए तो आपको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती होगी, भाई इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं कि खुद ही सब समझ जाते हैं और सब कुछ बोल भी देते हैं। हाँ हाँ ठीक है, अब बटरिंग करना बंद करो और बाहर जाओ, मुझे डॉल को तैयार करना है, आहान ने जवाब दिया। आहान ने आयुष को बाहर भेज दिया था। उसके जाते ही चाहत ने अपने चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट दी। कुछ भी कहकर वो आयुष की खुशी को कम नहीं करना चाहती थी। चाहत ने भले ही कुछ न कहा हो लेकिन आहान ने उसके चेहरे के बदले हुए भावों को नोटिस कर लिया था। आयुष के जाते ही आहान ने गंभीर चेहरे के साथ पूछा, क्या हुआ डॉल, तुम अचानक से परेशान क्यों हो गई? मैंने नोटिस किया कि कार्तिका का नाम सुनकर तुम्हें खुशी नहीं हुई। हाँ, क्योंकि आजकल आसानी से किसी पर यकीन करने का मन नहीं करता है, हम उसे सिर्फ एक हफ्ते से जानते हैं आहान, फिर हम उसे हमारे आयुष के लिए कैसे चुन सकते हैं? मुझे उसे देखकर अच्छी वाइब नहीं आती है, दोस्ती तक ठीक है लेकिन शादी बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, चाहत ने अपने दिल का डर आहान को बता दिया था।
आहान उसकी बात समझ रहा था। उसने चाहत का हाथ अपने हाथ में लिया और सहलाते हुए कहा, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन कई बार एक बार देखना ही काफी होता है। मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तभी लगा था कि तुम में कुछ अलग बात है। मैंने कार्तिका के बैकग्राउंड के बारे में पता कर लिया है, वो सच में एक अच्छी लड़की है। चाहत ने इस बात को आगे नहीं बढ़ाया और अपने दिल की फीलिंग को एक वहम समझकर जाने दिया। उसने आहान की बात मान ली और बात बदलते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अब मुझे जल्दी से तैयार कर दीजिए। इतने दिनों से हॉस्पिटल के बेड पर काफी बोरिंग लगता था, चलिए ना सबके बीच बैठकर पार्टी करते हैं। आहान चाहत को आईने के सामने लेकर गया और उसके बालों को खुला छोड़कर हेयर बैंड लगा दिया था। बिना किसी मेकअप के भी चाहत खूबसूरत लग रही थी। उसके बाद आहान ने बच्चे का ड्रेस चेंज किया और उनके साथ बाहर आया। बाहर आते ही चाहत की नज़र सबसे पहले कार्तिका पर गई। उसने अपने मन में कहा, न जाने इसे देखकर अच्छी फीलिंग नहीं आती है। ऐसा बहुत कम मौकों पर होता है कि मुझे किसी से नेगेटिव वाइब आए। आई होप कि ये बस मेरा वहम ही हो। श्रद्धा चाहत के आते ही बाहर आई और उसे ले जाकर सामने के सोफे पर बिठा दिया था। आहान भी उसी के पास में बैठा हुआ था। उन्होंने सबने मिलकर लिविंग एरिया को काफी अच्छे से डेकोरेट किया था। वो सब देखकर चाहत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने उन सबसे चाहा, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए इतने एफर्ट्स डाले।
अच्छा अब थैंक यू कहना बंद करो, तुम्हारा इन सब पर हक बनता है, इस घर की बहू हो तुम, शिवानी ने जवाब दिया। फिर वो उन सब की तरफ देखकर बोली, अच्छा सबसे पहले हम बच्चे का नाम डिसाइड करते हैं। पूरे एक हफ्ते से कोई किसी नाम से बुला रहा है तो कोई किसी नाम से, मैं चाहती हूँ कि अब इसे एक अच्छा सा नाम मिले। हाँ मॉम, मैंने तो एक लंबी सी लिस्ट बना रखी है, आयुष ने जल्दी से कहा। उनमें से कोई कुछ आगे बोलता उससे पहले चाहत ने कहा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन आहान ने बच्चे का नाम पहले ही रख दिया है। नाम रख दिया, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें सॉरी कहने की क्या बात हो गई, तुम दोनों इसके पेरेंट्स हो और तुम्हारा पूरा हक बनता है, तनु ने मुस्कुरा कर कहा। फिर वो आहान की तरफ देखकर बोली, इसने नाम रखा है तो जरूर कुछ अपनी तरह से अजीब सा नाम रखा होगा, वैसे क्या नाम सोचा है? धैर्य, आहान ने जवाब में कहा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा नाम है, शिवानी ने मुस्कुरा कर कहा। उसके बाद सब डांस करने और गेम्स खेलने में बिजी हो गए थे। कार्तिका उनके साथ थी तो सही, लेकिन वो पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं हो रही थी। उन सबको इस तरह साथ में हंसते गाते देखकर कार्तिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। कितनी प्यारी है इनकी फैमिली, मॉम डैड भाई बहन सब हैं, ऊपर से किसी चीज़ की कमी नहीं है। काश हमारे भी मॉम डैड हमारे साथ होते तो हमारी फैमिली भी आज इतनी ही खुशहाल होती, सोचते हुए कार्तिका की आंखें नम होने लगीं। उसे कहीं ना कहीं उनकी फैमिली देखकर जलन हो रही थी। रात के लगभग 10 बजे तक उन्होंने साथ में पार्टी की। पार्टी खत्म हो जाने के बाद, खाना खाने के बाद आयुष कार्तिका को बाहर तक छोड़ने के लिए आया था। बाहर आने के बाद आयुष ने कार्तिका से कहा, तुम बेवजह जिद कर रही हो, मैं तुम्हें घर पर छोड़कर आ जाता और बच्चों के लिए खाना भी ले लेते। घर जाकर तुम्हें खाना बनाना होगा, मुझे ये सोचकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मुझे इसकी आदत है, तुम मेरी आदत मत बिगाड़ो, मैं खुद कर लूँगी। वैसे भी हॉस्पिटल से देर रात को आने जाने की वजह से मुझे रात को घूमने में अजीब भी नहीं लगता, तुम अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, हम बाद में भी मिल लेंगे, कार्तिका ने मुस्कुरा कर कहा। आयुष उसे घर ड्रॉप करने के लिए जाना चाहता था, लेकिन कार्तिका ने इसके लिए मना कर दिया था। आयुष से थोड़ी देर बात करने के बाद कार्तिका ने टैक्सी ली और फिर अपने घर पहुँच गई थी। उसने रास्ते में बच्चों के लिए बाहर से खाना लिया था। जैसे ही कार्तिका घर में कदम रखा, वो उन सबको आवाज़ लगाकर बुलाने लगी, कीर्ति कहाँ हो तुम, घर में इतनी शांति कैसे है, क्या आदित्य और अर्जुन सो गए हैं, मैं तो तुम लोगों के लिए तुम्हारा फेवरेट पिज़्ज़ा और पेस्ट्री लेकर आई थी। कार्तिका मुस्कुराते हुए अंदर आ रही थी, लेकिन घर में बिल्कुल शांति थी, यहाँ तक कि लाइट तक किसी ने ऑन नहीं की थी। कार्तिका ने अंदर जाकर लाइट ऑन की तो देखा उसका घर खाली पड़ा हुआ था। इस तरह अपने घर में बच्चों को गायब देखकर उसके हाथ से खाना छूट गया था और वो ज़मीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी थी। कीर्ति आदित्य अर्जुन कहाँ गए तुम, मेरे भाई बहन कहाँ गायब हो गए, उनके बिना मैं क्या करूँगी, कार्तिका रोते हुए चिल्लाने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से वो तीनों कहाँ गायब हो गए थे। फिलहाल के लिए इतना ही, अगले पार्ट पर मिलते हैं, प्लीज़ पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा।